ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। So I was in America for a long time, almost 2 months, and England, and everywhere I spoke in English, almost in temple, beside Bhagavad Katha. So I thought I should speak in Hindi here. I know I told you I speak in English, but because it is Leela, and I will have a hard time trying to bring that feeling of the Leela in English, so better I speak in Hindi. There is translation backside. Sab log aage aa jao, Hindi wale aage jao. Jisko Hindi nahi aati hai, wo Raghav Prabhu ke paas. One who do not know Hindi, please go to Raghav Prabhu. To aaj hum log padhenge Bhagavat Mahapuran ke dasam skandh, अध्याय 9 से श्लोक 18, भगवान दामोदर का जो लीला हुआ था उसमें से एक श्लोक लेंगे, उस पर विचार करेंगे। स्वमातुः शुग्नगात्राय विस्त्रवाकवरस्त्रज दृष्टवा परिश्रमं कृष्णः कृपया आसित स्वबन्धने स्वमातु स्विगत्र स्वमातु स्विगात्राय स्वमातुः स्विन्नगात्राय विस्रस्तकवरास्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासित स्वबन्धने स्वमातु स्विन्नगात्राय विस्रस्त कबरास्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासित स्वबन्धने स्वमातु स्विग्नगात्राय विस्रस्त कबरास्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णा कृपयासित स्वबन्धने। सुनाए सब पंखा बंद कर पीछे का।
Yeah.
Let it. Swamatu of his own mother, apni mata ke dwara, Jasoda ji ke dwara, Finnagatraya, when Krishna saw his mother perspiring all over because of unnecessary labor. जब कृष्ण ने देखा कि मेरी माता व्यर्थ की परिश्रम कर रही है और पसीने चू रहे हैं, विस्रतास वे आर फॉलिंग डाउन, गिर रहे थे, कबरा फ्रॉम हर हेयर, उनके बालों से, Srajaha of whom the flowers, के बालों से फूल गिर रहे थे, मालती के फूल, दृष्टवा by seeing the condition of his mother, अपने माँ के स्वरूप को देख करके, परिश्रमम he could understand that she was now overworked and feeling fatigued. उन्होंने देखा कि माँ बहुत कठिन परिश्रम कर रही है और थक गई है. कृष्णा the supreme personality of Godhead, भगवान श्री कृष्ण, कृपया by causeless mercy upon his devotees and mother, अपने भक्तों और माता पर अपना अहेतु की कृपा दिखाते हुए, आशिता अग्रिड स्वीकार किए, स्वबंधने इन बाइंडिंग हिम, जिससे कोई उन्हें बांध सके. Translation and purport by Srila Prabhupada. तो मैं translation purport को अंग्रेजी में पढ़ लेता हूँ, उसके बाद हम लोग करेंगे. Because of mother Yashoda's hard labor, her whole body became covered with perspiration, and the flower and comb were falling from her hair. When child Krishna saw his mother thus fatigued, he became merciful to her and agreed to be bound. Purport. When Mother Yashoda and the other ladies finally saw that Krishna, although decorated with many bangles and other jeweled ornament, could not be bound with all the rope available in the house, they decided that Krishna was so fortunate that he could not be bound by any material condition. Thus, they gave up the idea of binding him. But in competition between Krishna and his devotee, Krishna sometime agreed to be defeated. Thus, Krishna's internal energy yoga maya was brought to work, and Krishna agreed to be bound by Mother Yashoda. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanasalakaya चक्षुर्जन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. सिक्योरिटी कहां गए? सिक्योरिटी चाय पीने गए कि बाथरूम गए? तो बीज अफ्ता के समान रस्सी जुटा रहा है क्या बांधने के लिए कृष्ण को? देखो इधर लोग बात कर रहे हैं। तो ये महीना कार्तिक का महीना है, बड़ा स्पेशल महीना है। प्रभुपाद जी के साथ में कुछ भक्त लोग बैठे हुए थे और पूछ रहे थे कार्तिक के विषय में। तो प्रभुपाद ने कहा कि ये महीना सेल्स का महीना है, दिस मंथ इज मंथ ऑफ सेल। जैसे कभी कभी सेल लगता है ना, कहीं कहीं बाजार में कपड़े का सेल लगता है, ऑर्नामेंट का सेल लगता है, 100 रुपए का सामान 50 रुपए में बिकता है, सेल। और बहुत लोग जाते हैं खरीदने के लिए। अब वो साल भर सेल लगेगा तो वो कोई मतलब नहीं है ना, कभी कभी लगता है। तो ऐसे ही कार्तिक का महीना साल भर नहीं होता है, वो स्पेशल है, एक महीना सेल लगा हुआ है। और जो भी कार्तिक के महीने में भक्त हो, चाहे कोई भी हो, भगवान दामोदर को ये लैंप दिखाता है तो भगवान की अचला भक्ति उसे प्राप्त होती है। हरिभक्ति विलास, पद्म पुराण, अन्य ग्रंथों में कार्तिक महात्म का वर्णन किया गया है और विभिन्न प्रकार के उपाख्यानों का वर्णन किया गया है, कैसे किसने क्या किया तो क्या फल मिला इत्यादि इत्यादि। हम लोग उधर नहीं जाएंगे। तो ये सेल्स का महीना है, भक्तों को कुछ प्राप्त करना चाहिए। सेल्स के लिए जब जाते हैं तो हम लोग कुछ धन लेकर जाते हैं, खरीदते हैं। इस महीना में भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए खरीदना पड़ेगा और कुछ हम लोगों को भाव, कुछ किसी प्रकार का हमें विचार करना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूं स्पेशल। विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न चीज करते हैं, विभिन्न प्रकार का व्रत करते हैं। कोई आदमी सोचता है कि पूरे कार्तिक महीना मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, लेकिन पता चला कि उसको डायबिटीज हुआ था। अरे डायबिटीज हुआ, मिठाई नहीं की तो बड़ा बात क्या है, ऐसे व्रत मत करो। आप लोग जानते हैं टीम शब्द, टीम, टीम में कितना अक्षर है, टी ई ए एम। टीम का अर्थ होता है टुगेदर ईच वन अचीव मोर। टुगेदर साथ में, ईच वन सब लोग अचीव प्राप्त करें, मोर मतलब ज्यादा से ज्यादा। टुगेदर ईच वन अचीव मोर इज कॉल्ड टीम। तो हम लोगों को इस प्रकार का व्रत धारण करना चाहिए कि हम सब लोग कम से कम एक महीना मंदिर के प्रेसिडेंट, टेम्पल कमांडर और वाइस प्रेसिडेंट का निंदा नहीं करेंगे, इस तरह से मैनेजमेंट का निंदा नहीं करेंगे, आश्रम में चाहे कहीं पर भी एक महीना तक किसी साधुओं का निंदा नहीं करेंगे, कोई वैष्णव अपराध नहीं करेंगे, ऐसे भाव लेना चाहिए, ये फायदा करेगा। एक महीना तक हम ज्यादा से ज्यादा भागवत का अध्ययन करेंगे, नाम जप करेंगे, ज्यादा सेवा करेंगे इत्यादि। एक महीना तक हम खूब नाचेंगे कीर्तन में, टीम साथ में सब लोग अचीव करेंगे। और ये टीम चीज ऐसा है, वास्तव में हम लोग साथ में रहें तो हम लोग बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। साधु संग सर्वशास्त्र को है, लव मात्र साधु संगे सर्वस्थि है। यदि किसी भक्त को तकलीफ होता है भक्ति राज्य में, तो उसका कारण है कि उसे संघ नहीं होता है, टीम बिल्ड नहीं है। अमेरिका में कैलिफोर्निया में एक जंगल है, वो रेड वुड फॉरेस्ट कहलाता है, रेड वुड फॉरेस्ट, वो लाल लकड़ी का जंगल है, लाल वृक्षों का जंगल है। वो वृक्ष संसार में उन वृक्ष के समान कोई वृक्ष नहीं है। वो वृक्ष बहुत ऊंचे होते हैं, हजारों साल जीते हैं, और उनकी लंबाई कोई नापना चाहे तो 25 आदमी हाथ से हाथ मिला करके एक घेरा बनाए तब उसको पकड़ सकते हैं। मतलब कि टेम्पल डूम जितना इतना मोटा होता है, बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा होता है। लेकिन आप लोगों को पता है, कोई को सोच सकता है कि जब पेड़ इतना लंबा होता है, हजारों साल जीता है, तो इसका जड़ तो बहुत नीचे जाता होगा। जितना लंबा पेड़ उतना लंबा जड़ होता है। लेकिन पता है आप लोगों को, उसका जड़ नीचे नहीं जाता है, फैलता है। जड़ बस इतना नीचे जाता है बस, और फैलता है चारों तरफ। कोई सोच सकता है, अरे इतना जड़ केवल नीचे गया, इतना आंधी तूफान बरसात आया, इतना बड़ा पेड़ फिर भी क्यों गिरता नहीं है? क्योंकि ये जितने पेड़ के जो जड़ हैं इधर जाते हैं, एक दूसरे को टाई कर लेते हैं। ये जड़ जो हैं एक दूसरे को टाई कर लेते हैं। चूंकि एक दूसरे को टाई करते हैं, इसलिए कितना भी बरसात आए, तूफान आए, हेरिकन आए, कुछ भी आए, लेकिन उन पेड़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक वैसे ही यदि हम लोग टीम वर्क करेंगे, कोई भी कार्य हो, टीम वर्क करेंगे, साथ में नाचना गाना, कथा सुनना, भगवान का सेवा करना, हरि नाम जाना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, यदि टीम वर्क करेंगे, एक दूसरे को बांध कर रखेंगे, तो माया का झोंका हम पर कोई असर नहीं डाल पाएगा। हम लोग भी रेड वुड ट्री के समान खड़े रहेंगे। तो ये कार्तिक महीना स्पेशल महीना है, स्पेशल महीना है। भगवान कृष्ण जो लीला किए हैं कार्तिक महीने में, भक्तों को जस प्रदान करने के लिए, जस प्रदान करने के, एकदा गृहदासिषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर निजुक्तासु निर्बंध स्वयं दधी। कृष्ण ये लीला किए जसोदा, जस दा, जस देने के लिए। जय श्री गौनता है राधारस विहार ललता विशाख, जस देने के लिए। जस नंद गेहिनी को दिए इस लीला में, लेकिन इस लीला के कई एक भाव है। सबको जस प्राप्त हो सकता है इस लीला कथा का श्रवण करने से और इस पर चिंतन करने से। यह जो लीला है, सामान्य रूप से यह लगता है कि भगवान का लीला है, कहानी है, लेकिन बहुत सैद्धांतिक है, बहुत गूढ़ सिद्धांत इसमें छिपा हुआ है। दशम स्कंद के 9वें अध्याय में 23 श्लोक हैं, और इनका व्याख्या किया जाए, आचार्य लोग किए हैं, क्या सुंदर सुंदर सिद्धांतों का प्रतिपादन किए हैं। चलिए अब इस लीला पर हम लोग विचार करते हैं। कृष्ण थोड़ा बड़े हो गए थे, अब चल फिर रहे थे, दौड़ रहे थे, बछड़ों को चराने ले जा रहे थे। 5 साल के बाद की लीला है। तो कृष्ण जब घर से बाहर निकलना शुरू किए, तो पहला काम किए दोस्ती करना, अपना मंडली भगवान पहले बनाए, मंडली बनाए, और रिक्रूट करने के लिए विभिन्न प्रकारों के लोगों को, बच्चों को अपने मंडली में वे शामिल करते थे। एक बड़ी सुंदर लीला है कि एक बार कृष्ण मनसुखा से मिले। मनसुखा जानते हैं ना, मनसुखा। मनसुखा को कृष्ण पकड़े और कहे कि भाई तू हमारे मंडली में शामिल होगा। तो मनसुखा ने कहा सोचते हुए कि भाई मैं तो बड़ा गरीब घर का लड़का हूं, मैं दुबला पतला हूं, मैं कैसे तुम्हारे मंडली में शामिल हो सकता हूं। भगवान ने कहा कि तुम चाहते हो तो हो सकते हो। तो मनसुखा ने अपना स्वीकृति दे दिया कि हां मैं आपके मंडली में शामिल होऊंगा। तो कृष्ण ने कहा कि देखो तुम दुबले पतले हो, तुमको हमारे समान हट्ठा कट्ठा होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा हमारे मंडली में शामिल होने के लिए। मनसुखा ने कहा भाई देखो कृष्ण, तुम तो नंद बाबा के बेटे हो और तुम तो राजा के बेटे हो, तुम्हारे यहां बहुत दूध दही मक्खन है, तुम खाते पीते रहते हो, हम तो गरीब परिवार के हैं, हमारे घर में सब नहीं है, मां हमको दूध भी नहीं देती है, कभी कभी छाछ मिल जाता है, हम कैसे तुम्हारे समान मोटा होंगे। तब कृष्ण ने कहा इसका चिंता मत करो, मैं इसका व्यवस्था करूंगा तुम्हारे लिए। तो कहा क्या तू व्यवस्था करेगा हमारे लिए? अरे तुम्हारी मां हमको दो दिन देगी, चार दिन देगी, पांच दिन, कितना दिन देगी? तो कहा कि वो नहीं, मां नहीं देगी, मां का लाया हुआ तुमको मैं नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे लिए कमाऊंगा और कमा करके तुम्हें मैं मक्खन डेली खिलाऊंगा। तो कहा अच्छा तो कैसे कमाएगा? तो कहा कि देखो हमारे मन में एक विचार है, यदि आप लोग सहमत हैं तो हम लोग एक सहकारी मंडली बनाएंगे। हाँ, सहकारी भंडार है ना यहां पर, ऐसे एक सहकारी मंडली बनाएंगे। क्या? अच्छा, सहकारी मंडली, उसका नाम क्या होगा? तो सहकारी मंडली का नाम होगा बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार मंडली। समझ गए? बाल गोपाल चौर विद्या, चोरी का विद्या प्रचार मंडली। सब एक दूसरे का मुख देखने लगे कि कृष्ण क्या तू हम लोगों को चोरी सिखाएगा? तू जानता भी है चोरी का परिणाम क्या होता है, बहुत बड़ा पाप है, और पकड़े जाएंगे तो भाई तू तो राजा का बेटा है, तुमको कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन हम लोग मार खाएंगे। कृष्ण का इसका चिंता तुम लोग मत करो, यदि मैं इसका कल्पना किया हूं तो मैं भी जानता हूं कि चोरी करना पाप है और पकड़े जाने पर मार खाना पड़ता है इत्यादि, मैं इसका समाधान कर लिया हूं। तुम लोग तो जानते हो कि जितनी विद्याएं हैं वो ब्राह्मणों से प्राप्त होता है, ब्राह्मण लोग समस्त विद्याओं के गुरु होते हैं। तो ये मालूम है चोरों के भी एक गुरु हैं, एक ऋषि हैं, उनका नाम है सफलक ऋषि, सॉरी कफला ऋषि, कफला ऋषि, और उन्हीं का दिया हुआ एक मंत्र है, उसका नाम है कफलम मंत्र। तुम लोगों को इतना ही कहना है कफलम 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 बस। तो जितना भी पाप होगा वो पाप नष्ट हो जाएगा और तुम लोगों को पकड़ भी नहीं सकता है। तो कृष्ण की बात पर सब लोगों का विश्वास था, सबने विश्वास कर लिया और सब लोग तैयार हो गए। देखिए भगवान के बात पर विश्वास नहीं होने से व्यक्ति का अकल्याण होता है और भगवान के बात में विश्वास करने से व्यक्ति का कल्याण होता है। संशयात्मा विनश्यति। भगवान गीता में कहते हैं जिस व्यक्ति को संशय हो जाता है उनके बाप पर, उसका विनाश होता है। तो ये ग्वाल बाल छोटे बालक थे, इन लोगों में स्नेह था कृष्ण के प्रति। प्रेम में कोई नियम कानून नहीं होता है, कोई नियम कानून नहीं होता है। तो वे लोग कुछ नहीं सोचे, कृष्ण के प्रति प्रेम था, श्रद्धा था, सबने विश्वास कर लिया। और उन लोगों ने पूछा कि ठीक है कृष्ण, अब ये मंडली बन गई, तो हमारे विचार से ये मंडली के ब्लूप्रिंट तुम ही तैयार किए हो, सब कुछ तुम जानते हो, तो मंडली का अध्यक्ष भी तुमको ही रहना चाहिए। तो कृष्ण कहा कि ठीक है, जब आप लोगों की इच्छा है तो मैं ही मंडली का अध्यक्ष रहूंगा। ऐसे ही भगवान सब कुछ के अध्यक्ष है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने वकौंती जगद्वी परिवर्तते। भगवान सबके अध्यक्ष हैं। तो भगवान स्वीकार कर लिए कि मैं अध्यक्ष रहूंगा इस मंडली का। मंडली का नाम क्या था? हाँ, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडली। कृष्ण का क्रिएटेड अपना मंडली है ब्रज में, ठीक है ना। तो ग्वाल बालों ने पूछा कि कृष्ण हमारा काम क्या रहेगा? भाई अब तो सदस्य बन गए तुम्हारे मंडली का, तो अपना कुछ काम तो होगा। तो भगवान ने कहा काम इतना ही है, तुम लोग आ करके हमें बताना कि कौन गोपी घर से कब बाहर जाती है और कब घर आती है, इतना बात बताना। और किसके घर में कितना कितने गायें दूध देती है। तो एक बालक हाथ उठाया, कहा मैं जानता हूं, मेरी माता 3 बजे बाहर जाती है और 7 बजे आती है, और मेरे घर में बहुत गौएं भी हैं, और अभी अभी मैं देखा मां ने बड़ा अच्छा अच्छा मक्खन बना करके रखा है, चलो आज हमारे घर चलते हैं। तो कृष्ण कहा अच्छा है, पहले ही निमंत्रण आ गया, चलो चलते हैं। वो तो बेचारा छोटा बालक था, उसे क्या मालूम था, उसने कृष्ण को इन्वाइट कर दिया। इस प्रकार से कृष्ण जा करके ब्रज में चोरी करना शुरू करते हैं। देखिए ये कृष्ण के द्वारा दिया गया मंत्र है, लेकिन कृष्ण के प्रसन्नता के लिए है, हैं? कफलक मंत्र जो है वो ग्वाल बाल लोग इस मंत्र का उच्चारण कर करके चोरी करते थे, कृष्ण के साथ खेलते थे, कृष्ण के प्रसन्नता के लिए करते थे, इसलिए यह चोरी नहीं कहलाया, इसलिए इसे पाप नहीं हुआ भगवान के लिए। ऐसा मत करना आप लोग भी कि कफलक मंत्र पढ़ करके कुछ चोरी करना शुरू कर देना क्योंकि कृष्ण दिया है। नहीं, हम लोग यहां पर जो कुछ भी करते हैं चोरी, वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। भगवान गीता में यही कहते हैं ना कि जो व्यक्ति मुझे अर्पित किए हुए बिना खाता है वो चोर कहलाता है ना। वह ते पचंती अघम पापम, वो पाप को ही खाता है। लेकिन उसी को भगवान को अर्पण कर दिया है, भगवान के प्रसन्नता के लिए कह जाए तो पाप नहीं है। तो ये सफलक मंत्र कृष्ण के प्रसन्नता के लिए, लेकिन हम लोग अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं इसलिए पाप हुआ। लेकिन ग्वाल बाल लोग कृष्ण के इंद्रियों को प्रीत करने के लिए करते थे इसलिए प्रेम था। तो इस प्रकार से कई एक प्रकार की उलाहना आने लगी। त्रिपाठी गोस्वामी गोपाल चंपू में वर्णन कुछ किए हैं, तो मैं सोचा कि हम पढ़ेंगे उसको और बाद में इस श्लोक पर जाएंगे ही। तो यशोदा रानी के यहां डेली कंप्लेन आने लगा और कृष्ण का नया नाम पड़ गया, चोरों का सरदार। जब भी कृष्ण याद करते वो चोर का सरदार जा रहा है, वो चोर जा रहा है, वो चोर जा रहा है। यशोदा रानी सुनती थी, बड़ा भद्दा लगता था। आजकल किसी को चोर कहा जाए तो बड़ा खुश होता है, पहले खुश नहीं होते थे लोग, पहले लोग दुख मानते थे। 2 दिन पहले हमारे श्रुत धर्म प्रभु आए थे तो हम लोग राकेश जी घर पर गए थे, तो वे एक बात बताया जो हम बहुत पहले से सुने थे। मैं सोचा फेयर कर लूं, बड़ा अच्छा था। पहले आज के में क्या अंतर हो गया है? उन्होंने एक बात कहा कि शेक्सपियर ने कहा था, हम लोगों को पढ़ाया गया था कि महात्मा गांधी ने कहा था। खैर कोई बात कहां शुरू हुआ कहां हुआ आप लोग सब जानते हैं। वह बात कहते हैं कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। लेकिन आजकल बिल्कुल उल्टा हो गया है। आजकल क्या हो गया है? इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इट कम्स इन पेपर एवरी डे। कैरेक्टर इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ वेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। सब उल्टा हो गया, जमाना बदल गया। तो पहले कोई किसी को चोर कह दे तो लोग बहुत गुस्सा करते, वो तो चोर कह रहा है, मारपीट हो जाता था। आप कोई चोर कहता तो बड़ा लोग कहता कोई बात नहीं, अच्छा है, पेपर में मेरा नाम आ रहा है, खुश होता है। तो पहले चोर कहना बड़ा खराब चीज था। चोर भी, चोर को चोर कहिए उसको भी घुसाता था, सज्जन व्यक्ति तो दूर रहे। तो कृष्ण को सब चोर कर, चोर जा रहा है, चोर जा रहा है, चोरों को सजा जा रहा है। माता जशोदा का बहुत दुख लग रहा था। तो एक बार एक गोपी आई और जशोदा मैया से उलाहना दे रही थी। गोपी कहती है, तुम्हारा पुत्र बारंबार अन्याय करता है। जशोदा कहती है, हे कुत्सित भाषणी, हे झूठ बोलने वाली, तुम्हारे साथ उसने क्या अन्याय किया? मेरा बेटा छोटा है, क्या अन्याय तुम्हारे साथ किया? तो गोपी कहती है, अरे जशोदा रानी, आप रानी हो, आप नहीं जानते हो क्या करता है। हमारे घर में जाता है और घूमते फिरते जाकर के बछड़ों को खोल देता है। जशोदा जी, अच्छा करता है, तुम्हारा सहायता करता है, इतनी तकलीफ क्या है? तुम्हारे बछड़े खोल देता है, तुम्हारा सहायता करता है। गोपी कहती है, नहीं, असमय में ही जाकर के बछड़े को खोल देता है। यानी अभी गाय दुही नहीं गई है, उसी समय जाकर के एक खोल देता है। तो जैसा जी कहती है, गोपी कहती है, असमय में बछड़ों को खोलना तो दुख का कारण होता है। जैसा जी कहती है, यदि कोई कारण न हो तो क्या कोई कुछ करता है? कोई तो कुछ कारण होगा, तभी तो जैसा खोलता है। तो गोपी कहती है, हे अधीश्वरी, यह बिना कारण ही करता है, इसके लिए कोई कारण नहीं है बछड़ा खोलने का। जसोदा यह कहना चाहती तो बछड़े को नहीं पिलाती होगी, शायद इसलिए खोल देता है। लेकिन गोपी समझती नहीं, कहती कि नहीं नहीं, ये अकारण ही खोल देता है। जसोदा जी कहते, अरे भामनी, तुम कोलाहल कर उसे वर्जन नहीं करती हो क्या? तुम हल्ला नहीं करती हो, डांटती नहीं हो? देखिए, कृष्ण जसोदा के ही लाला नहीं थे, समस्त ब्रजवासियों के लाला थे, सबका अधिकार था। पहले यही भाव हुआ करता था, गांव का छोरा पूरे गांव का छोरा था। गलती यदि करता है, कोई झापड़ दे दिया, चलता है, गलती किया था इसलिए। लेकिन आजकल कोई झापड़ दे तो बाप भी नहीं झापड़ देगा, पुलिस वाले आ जाएंगे तुरंत। आजकल जमाना उल्टा हो गया है। पहले गांव का छोरा था, पूरे गांव का था। तो कृष्ण पूरे गांव के थे। जसोदा रानी वही कहती थी, गलती करता तो झापड़ नहीं देती हो, तुम डांटती नहीं हो, तुम लोग हमारे पास आती हो इस प्रकार से कंप्लेन करने के लिए। गोपी कहती है, जब हम वर्जन करते हैं, जब मना करते हैं तो अंगूठा दिखाता है और दांत दिखा करके भाग जाता है, मतलब चिढ़ाता है, हंसने लगता है। यशोदा जी कहती है, तुम्हारे घर में और कुछ न हो तो थोड़ा सा जल देकर भी बालक को अच्छी प्रकार अपने बस में किया जा सकता है। तुम कुछ नहीं, जल देकर कर लो। गोपी कहती है, या तो चोरी करके वस्तुओं को रुचिपूर्वक भोजन करता है, देना तो दूर रहा है, चुरा चुरा करके खाता है और खिलाता है। जसोदा जी, अरे ना समझ, ऐसा विचार करना भी क्या तुम्हें उचित है? जसोदा जी दूसरे भाव से कह रही हैं कि तुम कैसे समझ सकती हो कि चोर है, अपने घर में कोई चोरी करता है, तुम्हारा घर तो उसका ही घर है ना, तो चोर चोरी थोड़े हुआ, ये उचित थोड़े है। तो गोपी कहती है, चोरी करने के समस्त उपायों का यह गुरु है। बल्लवाचार्य चौराष्टकम लिखे हैं, चौराष्टकम, हाँ, चौराग्य गर्ण अष्टकम, चोरों के सरदार का अष्टकम लिखे हैं। यशोदा जी कहती है ऐसा यही नहीं कह सकता, तुम सब मिथ्या कर रही हो। पता बताओ, छोटा बच्चा है, इतना बड़ा तुम्हारा शिखर होगा, कैसे उस पर चढ़ सकता है। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर यहां पर ये चोरी का बात हुआ है। तो यशोदा रानी बार बार सुनती थी कृष्ण के विभिन्न प्रकार के इस प्रकार के उदंड वार्ता और व्यवहार के संबंध में। और जब कृष्ण कभी कभी जाते थे, लोग चोर चोर बुलाते थे, चोर जा रहा है, चोर जा रहा है, तो यशोदा जी को बड़ा दुख लगा। और दुख से दुखी होकर के आज यशोदा रानी निर्णय की कि आज मैं, शायद हो सकता है, यशोदा रानी का वय उम्र ज्यादा हो गया था, दास दासियां मक्खन निकालते थे, तो यशोदा रानी को आभास हुआ कि हो सकता है लोग शुद्धि पूर्वक नहीं निकालते हैं और लाला को यह मक्खन अच्छा नहीं लगता है। इसलिए यशोदा रानी एक दिन निर्णय की कि आज मैं मक्खन निकालूंगा। एकदा गृहदासिषु यशोदा नंदगेहिनी कर्मांतन युक्तासु निर्मंथन स्वयं दधि। तो मैं श्लोक बाय श्लोक नहीं जाऊंगा, नहीं तो कई एक घंटा लग जाएगा। मैं इस श्लोक पर जाना चाहता हूं, तो इसलिए समय अभाव के चलते इसको देखते हुए, दिवाली का समय था, ऐसे भी दिवाली के समय बहुत से कार्य होते हैं। यशोदा रानी अन्य दास दासियों को विभिन्न प्रकार के कार्यों में निमग्न कर करके और अपने हाथ से कृष्ण के लिए मक्खन निकालने गई। इस अध्याय में तीन बार आया हुआ है निर्मंथन स्वयं दधि। निर्मंथन के अलग अलग अर्थ हैं तीनों स्थान पर। यहां पर निर्मंथन का अर्थ है यशोदा रानी सोच रही है कि क्या कारण है, क्या कारण है जिसे कि लाला दूसरे घर में चोरी करने जाता है। सामान्य अर्थ है मथनी कर रही थी। कैसे मथनी? निर्मंथन, निकृष्ट रूप से, यानी स्वच्छ होकर के। अब सुखदेव गोस्वामी यशोदा रानी के स्वच्छता पर विचार करते हुए उसका वर्णन करते हैं कि सुबह सुबह यशोदा रानी स्नान इत्यादि कर करके, शुद्ध वस्त्र धारण कर करके, ऊर्ध्वपुट तिलक कर कर करके और मक्खन निकालने गई थी। आचार्य गर्भण करते हैं कि भगवान का जब सेवा करना है तो शुद्धि का विचार करना चाहिए, शुद्धता पूर्वक भगवान का सेवा होना चाहिए, कोई भी सेवा हो। ये नाम जब भी इस सेवा है। कई एक प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, एक शारीरिक अशुद्धि होती है, मानसिक अशुद्धि होती है। यदि नाम जप कर रहे हैं तो शुद्धता पूर्वक नाम जप करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सुनते हुए नाम जप करें। सेवा कर रहे हैं तो शुद्धता पूर्वक नाम सेवा करें। ये नहीं कोई डंडा लेकर खड़ा है तब सेवा कर रहे हैं, अब तो चला गया तो नहीं सेवा करूंगा। ये शुद्धि है। शुद्धि क्या है? मन लगा करके, निर्मंथन, मन लगा करके शुद्धता पूर्वक सेवा करनी चाहिए। जो भी सेवा है सिंसियरली और सीरियसली करनी चाहिए, तो उस सेवा में आनंद आता है। जब शुद्धता पूर्वक करेंगे तो आनंद आता है। कई भक्त कहते हैं प्रभु जी मैं बहुत दिन से जप कर रहा हूं लेकिन वो आनंद नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम शुद्धता पूर्वक नाम जप नहीं कर रहे हैं। सेवा करेंगे, जो भी सेवा, चाहे बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे कीर्तन में नाचना हो, मंदिर सफाई करना हो, चपाती बनाना हो, भक्तों का प्रसाद सर्विस करना हो, यदि शुद्धता पूर्वक करेंगे तो उसमें जरूर आनंद आएगा, क्योंकि मन उस सेवा में लगे रहेगा। और शुद्धता नहीं है तो मन कहीं और लगा हो, जबरदस्ती कर रहे हैं तो आनंद कहां से आएगा। जब मन लगेगा तब आनंद आएगा। तो शुद्धता पूर्वक, शुद्धता कैसी प्राप्त होती है? एक तो बाहरी शुद्धता, आंतरिक शुद्धता। यशोदा रानी भगवान के लिए जब मक्खन बना रही थी, तो चूंकि कृष्ण के लिए बना रही थी तो कृष्ण का चिंतन कर रही थी। यानी यानी हृदयतानी तदबालक चरितानी च दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत। भगवान जो जो भी लीलाएं किए थे उन लीलाओं का स्मरण करते हुए यशोदा रानी मक्खन निकाल रही थी और जल्दी जल्दी कार्य कर रही थी, क्योंकि कृष्ण को मक्खन खिलाना था। वो चाहती थी अपने हाथ से कृष्ण को मक्खन खिलाना। गांव में आप जानते हैं स्त्रियां बहुत पहले जग जाती हैं, बच्चे लोग बाद में जगते हैं। चिताना चाहते कि मैं मक्खन निकाल लूं, उसके बाद कृष्ण को जगाऊंगी और खिलाऊंगी। प्रत्येक दिन मैया कृष्ण को जगाती थी लोरी सुना सुना करके, सुलाती भी थी लोरी सुना करके और जगाती भी थी लोरी सुना सुना करके। कृष्ण जगते नहीं थे कई एक बार, तो कृष्ण बिल्कुल सोए रहते थे, कभी कभी उड़ जाते थे बिछावन पर ही आए करने लगते थे, फिर ही मैया जगाना पड़ता था। जैसे सो रहा है क्लास में बैठा है फिर भी सो रहा है, तुम्हारे जैसे कृष्ण सोते थे? हाँ तुम्हारे जैसे हैं, हाँ हाँ तुम्हारे जैसे, हाँ क्लास में तुम बैठे सो रहे हो तो कृष्ण बेड पर बैठ गए थे लेकिन सो रहे थे। रहा सिंधु है इधर क्लास में नहीं, वो भी मंगल आरती में खड़ा रहेगा सोता रहेगा। तो कृष्ण को जगा दिया गया था, यशोदा जगाती थी फिर भी। यशोदा रानी कहती तुम्हारे ग्वाल माल आए हुए, मित्र लोग आए हुए, चलो जाओ गोचारण करने जाना है, चलो जल्दी खाओ जल्दी खाओ। नहीं मैया अभी थोड़ा सोने दो। लेकिन आज अलग ही कुछ विचार था। मैया मक्खन निकाल रही थी, मनसा वाचा कर्मणा तीन लग गया था। सनातन गोस्वामी बात कहते हैं कि जिसका मनसा वाचा कर्मा लग जाए, कृष्ण कहीं भी रहें रेस्टलेस हो जाते हैं। कृष्ण सो रहे थे, मैया का मन लग गया था कृष्ण के लीलाओं का चिंतन करने में, मैया का वाणी लगा हुआ था कृष्ण का के लीलाओं का गुणानुवाद करने में, मैया का तन लगा था कृष्ण के लिए मक्खन निकालने के लिए मथनी महने में, सब कुछ लग गया था। यहां वर्णन किया गया है मैया के सौंदर्य का, सुखदेव गोस्वामी वर्णन किए हैं कि मालती जो फूल था वो गिर रहा था, उनके चरणों से पसीना चू रहा था, लेकिन मैया उसी समय क्या हुआ, तान अस्तन्य काम आसाध्य मंथन जननी हरि गृहत्वा दधि मंथानम निषेधत प्रतमावह, निषेधत प्रतमावह। भगवान आज पहली बार अपने आप उठ गए हैं, डेली उठाना पड़ता था मैया को, भगवान पहली बार उठ गए हैं और उठ कर करके अस्तन्य काम, जो छोटे बच्चे होते हैं वो जगते हैं तो उनको बहुत भूख लगती है, रात भर काम करते हैं, उनके लिए सोना भी रात भर काम होता है, जगते हैं उन्हें बहुत भूख लगती है और उनको बाथरूम टॉयलेट भी नहीं जाना पड़ता है, दातुन भी नहीं करना पड़ता है, सीधे उनको भोजन चाहिए। यशोदा मैया पहले बहुत प्रयास करके कृष्ण को जगाती थी, लेकिन मैया को आश्चर्य, अरे आज कृष्ण जल्दी आ गया, अपने से जग करके आ गया। सुखदेव गोस्वामी अस्तन्य काम, क्योंकि कृष्ण को भूख लगा था। मैया को बड़ा दया आया कि मैं कृष्ण के लिए माखन निकाल रही हूं, तो मैया ने देखा मटकी में तब थोड़ा माखन निकला था, तो मैया से रखता और निकालता हूं, कृष्ण को बैठा दिया, मैया बैठो यहां पर थोड़ा माखन निकाल लेते हैं, बाद में तुम्हें माखन खिलाऊंगी। लेकिन कृष्ण को तो माखन नहीं खाना था, कृष्ण को मैया का दूध पीना था। तो भगवान कृष्ण आए मैया के आकर के पीछे से और उसका साड़ी पकड़ लिए और मैया के जंघे पर सवार होकर के, नहीं पहले आकर के भगवान मथनी पकड़ लिए, मैया रख दी थी कि नहीं तुम बैठो मैं मक्खन निकाल लेता हूं, निकालती हूं बाद में मक्खन खिलाऊंगी या दूध पिलाऊंगी। कृष्ण आए और आकर के गृहीतवाद अधिमंथानम निषेध निषेध किए। मान भगवान कहते हैं बफ बफ मैया अब तुम्हारी साधना पूरी हो गई, मनसा वाचा कर्मणा जिसका लग गया उसका साधना पूरा हो गया। भगवान वहां पर प्रीतम आवहन, प्रीतम प्रेम को इनवाइट किए। मन भगवान रोले बिलखने लगे, मैया मुझे बहुत भूख लगा है, मुझे बहुत भूख लगा है, और भगवान जबरदस्ती मैया के जंघे पर चढ़ करके और अस्तन पान करने लगे। आचार्य गण कई एक प्रकार से वर्णन किए हैं कि जो अस्तन में जो दूध था, जब कृष्ण आ रहे थे तो दूध बड़ा भयभीत हो रहा था कि भगवान हमें पान न करेंगे, यशोदा मैया मक्खन निकाल रही है वो मक्खन खा लेंगे फिर हमारा क्या होगा। तो भगवान उसका इच्छा पूरा करना चाहते थे इसलिए दूध पान करना शुरू किए। मैं सब कथा संक्षिप्त में कह रहा हूं। भगवान जब दूध पान कर रहे थे मैया मथनी मथना छोड़ दी, माताओं को यह आनंद प्राप्त होता है अपने संतान को अस्तन पान कराने का। मैया कृष्ण को अस्तन पान करा रही थी, कृष्ण के घुंघराले बालों में अपना हाथ घुमा रही थी, और जब कृष्ण कभी कभी देखते थे और मैया देखते थे दोनों का जब आंख मिलता था तो वो जो ब्रह्मानंद का सुख यशोदा को प्राप्त होता था किसी को प्राप्त नहीं होता था। उतने पर क्या हुआ कि वहीं पर नंद बाबा कृष्ण के लिए कपिला नाम का गाय रखे थे, ये स्पेशल गाय थी, ये गाय केवल दूध का घास खाती हैं और उनका दूध सुमधुर और सुगंधित होता है। तो एक काले वर्ण की होती है, पूरा शरीर काला होता है बिल्कुल, वो कपिला होती है। तो यशोदा रानी ने देखा, पहले उनको आनंद आ रहा था कृष्ण को एकर करके, लेकिन जब देखा कि दूध उफल रहा है तो उनका अटेंशन उधर चला गया। आचार्य गण कई एक प्रकार का कमेंट्री यहां पर दिए हैं कि जब एक पॉजिटिव कमेंट्री कुछ है, कुछ नेगेटिव कमेंट्री है, लेकिन सब लीलाप्रद कमेंट्री है। यहां पर एक आचार्य कहते हैं कि भगवान से बढ़कर करके भगवान का सेवा है। अपने जैसे दूध जो पिला रही थी यशोदा मैया वो अपने अस्तन का दूध पिला रही थी, लेकिन जो दूध खोल रहा था वो कृष्ण के सेवा के लिए था, वो खोल करके गिर रहा था तो यशोदा रानी उसका रक्षा करना चाहती थी। दूसरा आचार्य दूसरे आचार्य कहते हैं कि यशोदा रानी से सीखना चाहिए हम लोगों को कि अपने आनंद का हम तिलांजलि दे दें, वे सेक्रीफाई आवर ओन प्लेजर टू सेव अदर, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पड़ायो जाने रे। यशोदा रानी को बहुत आनंद आ रहा था लेकिन अपने आनंद को त्याग दी किसके लिए, जो दुख दूध को देखा कि वो कैसे गिर रहा है वो भी सेवा करना चाहता है। तो इस प्रकार से कई एक आचार्य लोग विभिन्न अपना मत दिए हैं। एक आचार्य कहते हैं कि कृष्ण के सेवा में जब डिस्टर्बेंस कभी हो जाए, वो दूध एक प्रकार से डिस्टर्बेंस हो गया था कृष्ण की सेवा में, मैया प्रेम से दूध पिला रही थी लेकिन दूध खोलने लगा। तो ऐसे ही कभी कभी हम लोग नाम जप करते हैं और दूध खोलना और कुछ नहीं, हमारे अंदर भी माया रूपी दूध खोलने कभी कभी लगती है। हम नाम जप करते हैं कभी कभी मन भाग जाता है, इधर से उधर चला जाता है, माला चल रहा है लेकिन मन कहीं और चला गया है तो दूध खोलना हुआ है। तो यह यशोदा रानी कृष्ण को दूध पिला रही थी और उधर दूध खोलने लगा। दूध क्यों खोल रहा था, आचार्य गण उसका भी वर्णन किए हैं, दूध क्यों खोल रहा था, क्योंकि दूध सोचा कि नंद बाबा तो मेरी मां को रखे हैं कृष्ण के सेवा करने के लिए और कृष्ण के सेवा मैं करती हूं, लेकिन आप यशोदा मैया का अस्तन पान कर रहे हैं, यशोदा मैया के अस्तन में तो तो क्षीर सागर के समान है, वहां पर दूध ही दूध है, फिर मेरा क्या होगा? यदि मैं प्रभु का सेवा नहीं कर सकती, यदि मैं कृष्ण का सेवा नहीं करता, मेरा जीवन क्या है? धिक्कार है जीवन। तो इसलिए तप्त होकर के खोल करके और अपना न्यौछावर कर रहा था, दूध अपना प्राण दे रहा था अग्नि में कि और कृष्ण की सेवा में तो नहीं लग सकता सकती हूं, लेकिन चलो अपने प्राण को न्यौछावर कर दूं। तो यशोदा रानी कृष्ण को रख करके उठाई, कृष्ण को बम रख दी वहां पर और दूध को उतारने के लिए गई। एक कवि ने कहा है, जीना है उसका भला जो भगवान के लिए जिए, मरना भी उसका भला जो अपने लिए जिए। समझ गए आप लोग? जीना है उसका भला, उसका जीवन सार्थक है जो भगवान के लिए जिए, जो भगवान और भगवान के भक्तों के सेवा के लिए जीता है उसका जीना सार्थक है, वो भला है। मरना भी उसका भला जो अपने लिए जिए, और जो अपने लिए जाता है भला मर जाए, बदमाश चलो जल्दी मर जाए, वो जिए नहीं मर जाए, जो अपने लिए यानी जो स्वार्थी है वो बल्कि मर जाए अच्छा है, और जो परमार्थी है वो बहुत दिन तक जीता रहे। तो यही सोच करके दूध सोचा कि क्या फायदा जीने से यदि मैं भगवान की सेवा में नहीं लग सकता, तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। अब इधर कृष्ण को बहुत गुस्सा आया, कृष्ण को एकांतिक भक्ति चाहिए, एकांत भाव से कोई कृष्ण का भजन करे तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं, लेकिन कृष्ण की सेवा में यदि कोई बाधा आ जाए, या ये कौन श्लोक है 18 ना, हाँ, कृष्ण की सेवा में एकांतिक भाव ना हो तो कृष्ण बड़े नाराज हो जाते हैं। तो कृष्ण को बहुत गुस्सा आया और मैया मटकी को बैलेंस करने के लिए जो पत्थर रखी थी या वहां पर सील लोढ़ा था, भगवान पत्थर उठाए और मटकी को दे मारे। भगवान सिखाना चाहते थे कि सुधा रानी आज मैं तुम्हें ऐसा सिखाऊंगा कि जीवन भर नहीं भूलूंगा मैया। तो 2 लीटर दूध बचाने के लिए मुझे छोड़कर गई हो, मैं तुम्हारे 10 लीटर दूध का मैं बर्बादी कर दूंगा, क्योंकि दही बनाने में 10 लीटर दूध लगा था, बड़ा सभी गायों का दूध वहां पर लगा था। तो 2 लीटर दूध के लिए 10 लीटर दूध को गंवाना पड़ा यशोदा मैया को। इसलिए हम लोग कभी कभी क्षण भांगुर भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए बहुमूल्य जीवन को गंवा डालते हैं। हरि हरि विफले जन्मो गवायनु, मानुष जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विसकायनु। क्षण भांगुर संसारिक सुख को प्राप्त करने के लिए अत्यांतिक सुख, अनलिमिटेड हैप्पीनेस और कृष्ण कॉन्शियसनेस हम लोग गंवा डालते हैं। भगवान सिखाए, और कृष्ण को गुस्सा आया था और कृष्ण गए और ग्वाल बाल लोग कहे कि कृष्ण चलो चलो जल्दी जल्दी चलना है, अपना मंडली का संपत्ति जुटाने के लिए प्रचार करने चलना है, आज किसी घर में जाना है। तो कृष्ण को गुस्सा था, कृष्ण कहा आज हम किसी घर में नहीं जाएंगे, आज हमारे घर में ही चोरी होगी, चलो आ जाओ सब लोग। सब ग्वाल बाल लोग आ गए, कृष्ण सबको बुला लिए, ग्वाल बाल लोगों को सब ऐसे वो गोविंदा के लिए बनाते हैं ऊपर ना पिरामिड बनाते हैं ना है? सब लोग बनाए और कृष्ण ऊपर से उतारे दही मक्खन का मटकी उतारे, बंदर लोग भी आ गए। भगवान ने सोचा कि बंदर कितने अच्छे हैं, राम अवतार में तो मैं जंगल में था, कुछ इन लोगों का सेवा नहीं कर पाया, बेचारे निस्वार्थ भाव से मेरा सेवा किए, अब मैं कुछ इन लोगों को कर दूं। देखिए लोग समझते हैं कि बंदर खराब होते हैं, बंदरों में बहुत अच्छे अच्छे गुण होते हैं। एक गुण है कि जंग वो ऐसे भगवान राम के पुजारी हैं और सीता माता के पुजारी हैं आज भी, कि जंगल में जाकर के बंदर लोग सब फल खाएंगे, खट्टा फल, मीठा फल कोई भी फल हो खा लेंगे, लेकिन दो फल नहीं खाएंगे, सीता फल और राम फल। आज भी बंदर लोग सीता फल नहीं खाते हैं और राम फल नहीं खाए। किसी को विश्वास ना हो तो वृंदावन जाकर देख लेना आप लोग, बंदर को सीता फल देना नहीं खाएंगे। सीता फल नहीं खाते हैं और राम फल, राम फल देखे आप लोग साउथ में वो ज्यादा होता है, राम फल नहीं खाते हैं, आज भी राम और सीता का बेचारे पूजा करते हैं। तो भगवान उन बंदरों को मक्खन खिला रहे थे, ग्वाल बालों को मक्खन खिला रहे थे, उखल पर बैठ कर करके भगवान सरदार के रूप में। अब यशोदा रानी आई, यशोदा रानी आई तो देखी मटके टूटा हुआ है, तो अंदर से तो उन्हें आनंद हुआ भगवान के गुस्सा को देख करके, लेकिन बाहर से गुस्सा दिखाने के लिए यशोदा रानी डंडा लेकर के और कृष्ण के मारने के लिए कृष्ण के पीछे आ रही थी। तो बंदर लोग वही बेचारे वो किम कर्तव्य अनग्रेटफुल नहीं, वो भी ग्रेटफुल हैं, वो लोग देखे कि मैया डंडा लेकर के आ रही है। वाल बाल लोग खा रहे थे प्रेम से, वो लोग भूल गए थे कोई मारेगा क्या, लेकिन बंदर लोग आवाज करना चुचु चुचु करना शुरू कर दिए। तो कृष्ण देखे कि मैया आ रही है डंडा लेकर के। अब डंडा लेकर के जब मैया आई, भगवान कूदे और चले भाग। एक आचार्य कहते हैं कि कोई व्यक्ति डंडा लेकर भगवान को नहीं पकड़ सकता है। ये डंडा क्या है? अभिमान। अभिमान के साथ में कोई भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता है। मैया के हाथ में डंडा था, अभिमान था कि मेरा बेटा है, गलती किया है, मैं इसे आज दंड दूंगी, डंडा लेती। तो हम लोग भी अभिमान का डंडा लेकर के हरे कृष्ण जप करें तो भगवान को नहीं पकड़ सकते। एक कारण मैया नहीं पकड़ पाई। दूसरा कारण कि भगवान भाग रहे थे और मैया भगवान का पीठ देख रही थी, तो पीठ देखकर भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, चेहरा देखकर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान का चरण कमल, भगवान का मुखारविंद, पीठ देखकर नहीं। भगवान के पीठ में अधर्म वास करता है, भगवान के मुखारविंद में धर्म वास करता है। भागवतम के तीसरे स्कंध में वर्णन किया गया है, धर्म अस्तना दक्षिणतः यत्र नारायणं स्वयं अधर्म पिष्टतो अस्मात् मृतलोक भयंकर। अधर्म पिष्टतो अस्मात्, भगवान के पीठ में अधर्म निवास करता है और जो अधर्म का अनुवायी होता है वह बार बार मृतलोक भयंकरम, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, विभिन्न प्रकार का देह ग्रहण कर करके दुख भोगता है इस संसार में। तो पीठ में अधर्म है, तो मैया पीठ देख रही थी तो भगवान कहां पकड़ सकती है? धर्म से भगवान को कोई जान सकता है? और वह भगवान के मुखारविंद से। तो जब तक से अहंकार रूपी छड़ी हमारे हाथ में रहेगी तो हम अधर्म ही करेंगे, और जब अहंकार रूपी छड़ी फेंक देंगे तब धर्म करना शुरू करेंगे। मैया थक गई बेचारी, दौड़ते दौड़ते हट्टा कट्टा शरीर था, मलाई पिस्ता खाई थी मैया, बुढ़ापा भी था, दौड़ रही थी, नहीं पकड़ पाए। मैया थक गई बेचारी, बैठ गई, हाथ में डंडा था, वो डंडा ही भारी लग रहा था। मैया डंडा को फेंक दिया, बस बदमाश कहेगा, डंडा को फेंक दिया मैया। जब भगवान देखेंगे मैया डंडा फेंक दिया तो भगवान मुड़ गए मैया की तरफ, कहे मैया क्षमा करना, मुझसे गलती हो गई। और ज्यों ही भगवान मैया की तरफ मुड़े, भगवान उठी और जाकर के भगवान को पकड़ ली। क्योंकि भगवान कैसे पकड़े गए? धर्म से, सामने सामने। 63 होना है, हम लोग 36 हो गए हैं, उल्टा हो गए हैं, सामने सामने। तब मैया पकड़ ली। अब मैया पकड़ ली तो उसका भी व्रण है, 5 मिनट समय और है ना, मैं सब पढ़ लूं। मैया पकड़ ली और भगवान से, भगवान हाथ जोड़ने लगे कि मैया मुझे मत मारो, मुझसे गलती हो गई। मैया ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें जरूर मारूंगी, तुम बदमाशी की हो किए हो, मैं तुम्हें मारूंगी। ग्वाल बाल सब रो रहे थे जब मैया पकड़ ली थी कृष्ण को और मैया पुनः डंडा उठा ली मारने के लिए, तो ग्वाल बाल लोग सब रो रहे थे कि मैया छोड़ दीजिए, इसमें कृष्ण का कुछ भी गलती नहीं है। कृष्ण को बचाने के लिए ग्वाल बाल भी झूठ बोल रहे थे, कहे कि मैया आज हम लोगों को बहुत भूख लगा था, इसलिए सुबह सुबह आए और कृष्ण से बहुत अनुनय विनय किए, तो हमारे अनुनय विनय करने पर, हमारे प्रार्थना करने पर कृष्ण ने एक काम किया। कृष्ण ने चोरी नहीं किया है, ये कृष्ण का ही तो घर है मैया ना, अपने ही घर में कृष्ण लिए हैं, हम लोगों के लिए किए हैं। यदि आपको दंड नहीं देना है तो मैया आप हम लोगों को दंड दो, कृष्ण को दंड मत दो। तो मैया इस प्रकार से ये ग्वाल बाल लोग कह रहे थे। अब कृष्ण क्या कह रहे हैं, कृष्ण बोले मां तुम मुझको मारना नहीं। कृष्ण रो रहे थे, माता ने कहा तुम चोर हो चोर। ऐसा कहकर गुप्त भाव से हंसती हुई माता यशोदा सहसा वाक कलह करने लगी। अब कृष्ण और माता में बात होने लगा। यशोदा ने कहा अहो तुम समस्त चोरों के राजा हो, चोर ही नहीं हो चोरों के राजा हो। तो कृष्ण बोले आपके पितृ वंशज यानी मेरे नाना के वंश क्या सब लोग चोर थे क्या? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो लड़कियां होती है उस पर उसके बाप के खानदान का असर पड़ता है और जो लड़के होते हैं उसके मां के खानदान का असर पड़ता है। तो कृष्ण कहते हैं कि मैया क्या हमारे नाना और खानदान वाले सब चोर ही थे क्या? चोर हैं, माखन चोर बालक के साथ माता यशोदा ने इस प्रकार कठोपवचन किया। यशोदा ने पूछा दधी की मटकी काहे टूट गई? कृष्ण बोले परमेश्वर का यह दंड है कि तूने हमको छोड़ दिया, तो भगवान ने व्यवस्था कर दिया। यशोदा जी ने कहा बंदर को माखन किसने दिया? श्री कृष्ण बोले जिसने बंदर की रचना की, जिसने बंदर की रचना की उसने माखन दिया, यानी मैंने रचना किया मैंने लोगों को माखन दिया। फिर माता ने कहा मुझे ऐसा दिखता है कि यज्ञ के अंग स्वरूप अर्थात शब्द घी का तुम सर्वदा स्वाद लेते रहते हो। इतना कहकर माता बाल कृष्ण के प्रति चोर की भांति वर्षना करने लगी, किंतु फिर उनका चित्त द्रवित भूत हो गया। तो इस प्रकार से बात हो रहा था। आनंद वृंदावन चंबू में वर्णन किया गया है, माता ने कहा कि तू बंदरों से तुम्हें बहुत प्रेम हो गया है, इसलिए तुम बंदरों को मक्खन खिला रहे हो। तो कृष्ण ने कहा कि मैया बंदर रहते कहां हैं, घर में क्यों आ जाते हैं? नहीं, मैया ने कहा कि बनवासी बंदर तुम्हारे चलते ही घर में आ गए हैं। तो कृष्ण ने कहा मैया बंदर क्या वन में रहते हैं क्या? तो मैया ने कहा, और मैया ने कृष्ण को मरकट सखा कहा था पहले, बंदरों का सखा। तो कृष्ण बड़े उदास हो, ठीक है मैया आपने तो मुझे मरकट सखा कह दिया है तो मैं भी अब जंगल में जाकर के बंदरों के साथ में रहूंगा। तो मैया को भय हो गया, वो कृष्ण के जिद को जानती थी, कहीं जिद में पड़ जाएगा जंगल में चला जाएगा तो फिर तकलीफ हो जाएगा। तो मैया ने सोचा कि घर का काम खत्म कर लूंगी, बाद में इसको खिलाऊंगी, तब तक इसको मैं बांध देती हूं। तो मैया अब बांधने का व्यवस्था की, तो रस्सी लेकर के आई। रस्सी बड़े कटु होते हैं, रस्सी का काम होता है बांधना। अमन अचार गर्म ब्रह्म किए हैं कि जो व्यक्ति बंधन में पड़ जाता है, किसी प्रकार का बंधन, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी परास्त हो जाता है बंधन में, चाहे वो स्त्री के बंधन में हो, धन के बंधन में हो, किसी भी बंधन में पड़ जाए तो बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी परास्त हो जाता है। और बंधन करना किसका काम है? रस्सी का। आज मैया जब रस्सी लेकर के आई कृष्ण को बांधने के लिए, जो रस्सी कठोर होते हैं, मैया जब रस्सी से कृष्ण को बांधने लगी तो कृष्ण के स्पर्श से वो कठोर रस्सी भी सॉफ्ट हो गया। ये है कृष्ण का स्पर्श, कृष्ण के स्पर्श से वो रस्सी भी भगत बन गया, सॉफ्ट हो गया। यानी जो कठोरता थी वो दूर हो गई। जीव और ईश्वर में दो उंगली का फेर है, उसमें कठोरता थी और कृष्ण के स्पर्श से नरम हो गया। तो सब का सब रस्सी दो उंगली छोटा हो गया, दो उंगली छोटा हुआ। मैया फिर रस्सी लाई और इस रस्सी से बांधी, जेब इस रस्सी से बांधी तो इसका स्पर्श होते हुए वो रस्सी भी सॉफ्ट हो गया, दो उंगली छोटा हो गया। यह है साधु संघ। जो एक साधु का संगति करता है तो साधु ही मनते जाता है। वो रस्सी स्पर्श किया कृष्ण से, दूसरा रस्सी स्पर्श किया, तीसरा रस्सी, जितना रस्सी बांधा गया सब का सब रस्सी दो उंगली छोटा हो गया। बलदेव विद्याभूषण प्रभु कहते हैं कि यहां पर ऐश्वर्य शक्ति और वात्सल्य भक्ति दोनों में झगड़ा हो रहा है। मैया में वात्सल्य भाव है, वो सोचती है कि मेरा बालक है, इसने चोरी की है, इसका आदत खराब हुआ है, इसको दंड देना मेरा धर्म है। इस प्रकार से मैया कृष्ण को बांधना चाहती थी। और उधर ऐश्वर्य शक्ति वे कहती हैं, ये मेरे पति हैं, मेरे पति कोई बांधे हम कैसे सहन कर सकती हैं। पत्नियों का स्वभाव होता है, मेरे पति कोई कौन होता है कहने वाला, भले ही मां क्यों ना हो, कौन हो, मेरा पति है। जैसे शादी हो गया, गया काम से है, मां का भी नहीं रह गया। रस्सी सोती कि मैं ईश्वर शक्ति सोती है, मैं देखती हूं कि कैसे यशोदा मैया बांध लेती हैं। इस प्रकार से जब यशोदा मैया बांध रही थी और बालक लोग बेचारे रो रहे थे, गिड़ा गिड़ा रहे थे, कहे कि मैया मत बांधिए मत बांधिए, फर्स्ट टाइम यशोदा मैया बालकों पर गुस्सा के गए, भागो तो हमारे घर से, सलाह देने आए हो तुम लोग। यशोदा रानी को गुस्सा हुआ था, यशोदा रानी कभी बालकों को ऐसा नहीं बोलती थी, और यशोदा रानी ने डांट दिया बालकों को, बेचारे अपने अपने घर गए और अब रोते हुए घर गए, अपने मां के सामने लगे रोने, गए कि मैया आज बड़ा अनर्थ हो गया। तो क्या हुआ, पूरा कहानी बच्चे बता रहे हैं और रो रहे हैं, न खा रहे हैं न पी रहे हैं, और सब गोपियां आ गई यशोदा रानी के घर पर, शाम हो गया ऑलमोस्ट, सब गोपियां आई और गोपियां करे यशोदा रानी छोड़ दो छोड़ दो, कृष्ण को छोड़ दो, हमारे बच्चे लोग स्ट्राइक पर चले गए हैं, ना खा रहे हैं ना पानी पी रहे हैं, सब केवल रो ही रहे हैं, कृष्ण को छोड़ दो। यशोदा ने कहा कि आज मैं नहीं छोड़ूंगी। सब गोपियां रो रही हैं, यशोदा भी रो रही हैं, लेकिन कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही हैं। जब यशोदा रानी रोने लगी, उनका दिल द्रवित हो गया, तो भगवान प्रसन्न हो गए। जब तक से हम लोगों का दिल कठोर रहेगा भगवान हमारे पास नहीं आएंगे, जब दिल नर्म हो जाएगा मेल्ट हो जाएगा तो भगवान तुरंत आ जाएंगे। कैसे आएंगे यह इस श्लोक में बढ़ेगा, समातु सिद्धवा गात्राय विस्त्रस्त कमरस्रज दृष्टवा परिश्रम कृष्ण कृपयासित संबंधने। भगवान की अनेक शक्तियों में एक शक्ति है कृपा शक्ति, और कृपा शक्ति के द्वारा भगवान जजमेंट करते हैं, तो उस कृपा शक्ति के द्वारा भगवान बांधे गए। अब भगवान बंध गए हैं और बंधन कैसे छुड़ाया जाएगा वो अलग लीला है, तो मैं उस लीला में आगे नहीं बढ़ूंगा। और इसी लीला के दामोदर लीला के चलते, दामोदर का अर्थ है दाम जस उदरे, उदर मतलब पेट और दाम मतलब रस्सी, जिनके रस्सी में, इसीलिए कृष्ण का एक नाम पड़ गया घसीटा राम। जानते हो कहानी ना, मैं एक बार बताया था, कृष्ण एक महात्मा थे, दो मिनट बता दूंगा, एक महात्मा थे सॉरी एक सेठ जी थे, बड़े परेशान हो गए थे और एक महात्मा के पास गए और कहे कि मैं बड़ा दुखी हूं, कुछ मंत्र हमको बताइए, कुछ आशीर्वाद दीजिए। तो महात्मा ने उनको मंत्र दिया कि तुम बोलो सीताराम 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 सीताराम। तो सीताराम सीताराम बोल रहे थे, लेकिन व्यापारी थे, बनिया थे। तो सीताराम बोलते बोलते कुछ दिन के बाद बोले घसीटाराम घसीटाराम घसीटाराम। तो एक दिन गुरु जी आया, देखा है तो मंत्र बदल दिया है, सोचा शायद दूसरा नया गुरु बना लिया होगा। कोई बात नहीं, आजकल चले लोग को नया गुरु मिल जाए तो छोड़ देते हैं। तो कहा क्या बात है भाई? वो आकर गुरु जी को प्रणाम प्रणाम किया, कहा गुरु जी बहुत धन्यवाद, आपने जो मंत्र दिया मुझे बहुत शांति मिल रही है। करे मैं तुमको सीताराम बोला था तो घसीटाराम कहां से बोल रहे? कहा नहीं गुरु जी, आप यही मंत्र दिए थे। कह मैं तुमको सीताराम दिया था। और सीताराम फिर जपने लगा, उसका मन लगी नहीं था सीताराम जपने में, घसीटाराम मन जल रहा था। तो रात को सपना हुआ और भगवान आकर के गुरु जी को बड़े डांटे, बदमाश, कहीं का तू नहीं जानता है मेरा एक नाम है घसीटाराम। जब यशोदा मैया ने हमको बांध दिया था तो उखल को मैं घसीट करके लेकर के आया था, तब से मेरा नाम पड़ गया घसीटाराम। घसीटाराम भगवान की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण। अब क्वेश्चन आंसर का समय नहीं है, हमारा मीटिंग है अभी, तो थोड़ा धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय। अन्न लीला जमल अर्जुन का लीला बड़ा सुंदर लीला है, कई बाद में करेंगे। हरे कृष्ण।